नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्यवचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर की आशीषों में आनंदित हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा और अपने शिष्यों के साथ वहां पर थे और एक स्त्री वहां पर आई और उसने संगमरमर के पत्र में बहुमूल्य इत्र को लाया और उसे प्रभु यीशु मसीह के सिर में उंडेल दिया। मेरे मित्रों, इस प्रकार से आगे हमने देखा कि फसा की रोटी की तैयारी की गई और प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ में भोजन पर बैठे और हमने ये भी देखा कि किस रीति से उन बारहों में से एक के पकड़वाए जाने के बारे में उसने प्रगटीकरण की। प्रभु यीशु ने कहा कि वह उनके द्वारा से पकड़वाया जाएगा। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और 14 अध्याय के 22 पद से अध्ययन आरंभ करेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब प्रभु के निकटता में आए और इस वचन के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे। हमारे अत्यंत दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जो दो धारी तलवार से भी तीखा और तेज है, जो शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके वचन से मनन चिंतन करना चाहते हैं, आपके वचन से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक के आत्मिक आंखों को, हमारे हृदय को, हमारे विचारों को, हमारे एकाग्रतापन को आप खोल दें, ताकि जब आपके वचन हम सुने या हमारे हृदय में कार्य करने पाए, हमारे हृदय से बोलने और बातचीत करने पाए, हमारे जरूरतों के मुताबिक हमसे बातें करने पाए। हमारे बहुत सारे श्रोता भाई बहन जो किसी न किसी रूप में दुखी हैं, निराशा में हैं, परेशानी में हैं, चिंताओं में हैं, व्याकुल हैं, अपने परिवार को लेकर, व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर, विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, प्रभु आप उनके सुधि ले, उनकी सहायता करें, ताकि वे जान पाए कि आप उनसे प्रेम करते हैं। प्रभु आज आप उन हरेक से बातचीत करें, हम सबको अपने वचन से सिखाएं, हमें आत्मा में और बलवंत करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमारा आज का अध्ययन मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय से है। पिछले अध्ययन के अंतिम में हमने देखा था कि यीशु ने अपने आत्मा में जान लिया था कि यहूदा इस्करियोती उसे पकड़वाने की योजना बना चुका है, अतः उसने उससे कहा कि वह अपनी योजना पूरी करने में शीघ्रता करे। अब हम देखेंगे कि यीशु ने अपने शिष्यों के लिए एक नया पर्व ठहराया जिसमें वे उसकी मृत्यु को उसके आने तक स्मरण करेंगे। मरकुस 14 उसके 22 से 25 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाक का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊं। मित्रों, यहाँ कुछ बातें बड़ी ही रोचक वरन महत्वपूर्ण है। फसा का कटोरा फसा के भोज में 7 बार उठाया जाता था और इस बीच में स्तुति गान का भजन गाया करते थे। जब कटोरा 7वीं बार उठाया जाता था या उठाया गया, तब यीशु ने उससे नहीं पिया और उनके साथ प्रभु भोज का अनुष्ठान स्थापित किया। अतः प्रभु भोज आज प्रभु के उस बलिदान को देखता है जो उसने 1900 वर्ष पूर्व हमारे लिए क्रूस पर दिया। फसा का पर्व यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, परंतु यही फसा यीशु के भावी हजार वर्षीय राज्य में फिर से मनाया जाएगा, जैसा यजकेल ने कहा है। मेरे विचार में इसका कारण है कि उस युग में भी उसके आगमन को स्मरण किया जाएगा। स्थापना के समय तो फसा उसके आगमन की प्रतीक्षा में था और मेरे विचार में यदि वो प्रतीक्षा में था तो मुड़कर पीछे देखना भी भला ही है और प्रभु के हजार वर्षीय राज्य में फसा का वास्तविक अर्थ पूरा होगा। पौलुस प्रेरित भी क्रुंथ की कलिसिया को अपने प्रथम पत्र में इसके विषय में लिखता है। अब हम मरकुस 14 अध्याय उसके 26 से 31 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ तितर बितर हो जाएंगे, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार कभी ना करूँगा। इसी प्रकार और सब ने भी कहा। मित्रों, यहाँ पतरस यीशु का साथ देने की शपथ खाता है। निसंदेह वह निष्ठावान था, परंतु उसे अपनी निर्बलताओं का बोध नहीं था। आज हम में से अनेकों के साथ भी यही समस्या है, हम अपनी निर्बलता को समझ नहीं पाते हैं। मेरी अपनी समझ में मनोविज्ञान में भी इसका कोई उपाय नहीं है। एकमात्र स्थान जहां आप इसे देख पाएंगे वह है परमेश्वर का वचन। मित्रों, हमारे लिए यही एक दर्पण है जो हमारी छवि प्रकट करता है। किसी मसीह संस्थान ने एक लेख छापा जो मेरी समझ में गलत छवि प्रस्तुत करता है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। यह एक लड़की की घटना सुनाता है जो परामर्श के लिए अपने पासवान या पादरी के पास गई। अनेक परामर्श सूत्रों के बाद जब उस पासवान को यह बोध हुआ कि वह उसकी सहायता करने में असमर्थ है, तब उसने उसे एक मसीही मनोवैज्ञानिक के पास भेज दिया। उसने बंटी को उसकी चिंताओं की गहराई में उपस्थित कारणों को समझने में उसकी अगुवाई की। अनेक समस्याओं का कारण उसके बचपन के अनुभव थे जिन्हें वह विस्मृत कर चुकी थी, अर्थात भूल चुकी थी, जिन्हें उसने अपनी विशेषज्ञता के आधार पर उभारा। इसका परिणाम यह हुआ कि वह किशोरी मानसिक समस्याओं से मुक्त हो गई और मनुष्यों एवं प्रभु के साथ नए संबंधों में आ गई। मित्रों, अब मुझे जो प्रकाशन प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कोई भी मसीही मनोवैज्ञानिक आज समस्याओं के समाधान में पासवान से बढ़कर नहीं है। मेरे अनुभव में हम भ्रमित हैं कि मसीही मनोवैज्ञानिक अपना मंत्र पढ़ेगा और हम समस्याओं से मुक्ति पा लेंगे। मेरे मित्रों, क्या मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि हम में से कोई भी मनुष्य के मन की गहराई को नहीं समझता या नहीं जानता? केवल परमेश्वर का वचन हम पर प्रकट कर सकता है कि हम कैसे पापी हैं। उस लेख में बंटी की यह समस्या थी, मेरे साथ भी यही समस्या है और आपकी भी यही समस्या है। जब यह बात हम समझ लेंगे तब हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि वह हर व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन का सच्चा ज्ञान रखता है हमारी सहायता कर सकता है। यदि हम परमेश्वर के वचन का पक्ष इसमें से हटा दें तो मनोवैज्ञानिक के पास सहायता हेतु जाने वाला मनुष्य एक समस्या का समाधान लेकर दो समस्याएं उसके साथ पकड़ लाता है। इस प्रकार उसकी अवस्था पहले से भी बुरी हो जाती है। यह स्पष्ट जान लें कि किसी भी समस्या का समाधान प्रभु यीशु ही है। आप समस्या का समाधान इसलिए नहीं खोजते हैं कि आप प्रभु के पास जाने योग्य हो जाएं। जी नहीं, आप प्रभु के पास इसलिए जाते हैं कि वह सबसे बड़ा वैद्य है, वरन वह सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक है और केवल वही है जो हमें जानता है। मैं इस बात पर बल दे रहा हूं क्योंकि मेरे विचार में यह अति महत्वपूर्ण है कि कोई तो ऐसा कहे। आज अनेक जन मानवीय समस्याओं का व्यापार बनाए हुए हैं, जबकि सत्य तो यह है कि केवल परमेश्वर का वचन उनकी समस्याओं का उपचार कर सकता है। मित्रों, हमें केवल उसके पास जाना और अपने बोझ उस पर डाल देना सीखना है। और हो सकता है कि हमें यह ज्ञात हो जाए कि हमारी बाल्य अवस्था में हमसे गलतियां हुई थी। मित्रों, हर बात में ही दोष है, परंतु हमारे पास एक मुक्तिदाता है जो हमसे प्रेम करता है और हम उसके पास कभी भी जा सकते हैं। यह बहुत बड़ा सौभाग्य मेरे और आपके लिए है। कोई तो है जिसके पास हम जा सकते हैं और अपनी बातों को उसे बता सकते हैं। मेरे मित्रों, यहाँ पर प्रभु यीशु शिष्यों से कह रहा है कि वह उनसे पहले गलील जाएगा। वह अपने पुनरुत्थान की घोषणा करता है। उसने कहा कि भेड़ें तितर बितर हो जाएगी, परंतु वह उनसे पहले गलील जाएगा और वहां उनसे भेंट करेगा। परंतु पतरस शांत नहीं रहता है और कहता है कि चाहे अन्य उसका साथ छोड़ दें, वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वह नहीं जानता था कि क्या कह रहा है। अतः प्रभु उसे भविष्य के लिए तैयार करता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसके साथ साथ सदा रहेगा। मेरे मित्रों, प्रभु ऐसे समय में आपके साथ रहेगा। वह हमारे निराशा और भय के समय हमारे साथ होगा। उसने निश्चय ही पतरस का साथ कभी नहीं छोड़ा। हम मरकुस 14 उसके 32 से 34 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर वे गतसमनी नाम एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं, तुम यहां ठहरो और जागते रहो। मेरे मित्रों, गतसमनी की वाटिका संभवतः यीशु का परिचित स्थान था और वे वहां बार बार आते जाते होंगे। मेरे विचार में वह पर्वत के दूसरी ओर होगी, क्योंकि वे वहां प्रायः जाते थे, इसलिए यहूदा को विश्वास था कि यीशु वहीं होगा। यीशु ने कभी भी यरूशलेम में रात नहीं बिताई थी, वह सदैव गतसमनी में ही चला जाता था। इस समय उसके साथ 11 शिष्य ही थे, जिनमें से 8 को छोड़ उसने 3 को अपने साथ लिया, पतरस, याकूब और यूहन्ना। इस समय वह उन्हें अपने निकट रखना चाहता था और वह प्रार्थना करने आगे गया। भाषा को पढ़ने से प्रतीत होता है कि वह घोर संताप में था और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, अर्थात उसका कष्ट असहनीय था। मित्रों, उसकी आत्मा कुछ नहीं तो भी क्रूस के कष्ट में थी। क्या उसे वहां क्रोध भी आया था? मेरे विचार में हाँ। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि हम केवल उस वाटिका की सीमा पर खड़े रह सकते हैं। यदि कोई कहे कि वह वाटिका में मसीह के साथ उपस्थित हो सकता है, तो वह उसकी निंदा करना होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे मित्रों, कम से कम मैं तो वहां उसके साथ नहीं जा सकता और आप भी नहीं जानते कि मैं कैसा निर्बल हूँ। उस वाटिका में अनेक भेद छिपे हुए हैं। मैं तो केवल बाहर खड़ा रहकर उसे प्रार्थना करते देख सकता हूँ। उसने हमसे कहा कि हम जागते रहें और प्रार्थना करें, जिससे कि परीक्षा में ना पड़ें। हम मरकुस 14 उसके 35 और 36 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। मित्रों, मार्कुस कहता है कि यीशु ने उस घड़ी के टल जाने के लिए प्रार्थना की। वह मृत्यु से नहीं डरता था, वह उस समय से परेशान था जब उस पर पाप लाद दिया जाएगा। वह हमारे लिए पाप बनाया गया। दूसरा क्रंथियों की पत्री 5 अध्याय उसके 21 पद में हम इसे पढ़ते हैं। मरकुस उस घड़ी को और कटोरे को एक दूसरे का पर्याप्त दर्शाता है। मित्रों देखिए, इब्रानियों का लेखक कहता है, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसके मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय उसके 7 और 8 पद में हम इसे पाते हैं। अब वह अपने इन 3 शिष्यों के पास आया और आगे हम पढ़ते हैं मार्कुस 14 उसके 37 और 38 पद में, फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मित्रों, तीनों गहरी नींद में थे। पतरस को तो चिंता ही नहीं थी कि यीशु ने कहा वह उसका इनकार करेगा, विशेष करके उसे तो जागते रहकर प्रार्थना करनी थी। जागते रहना और प्रार्थना करना परीक्षा से बचने का उपाय है। मेरे मित्रों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यीशु फिर से प्रार्थना करने के लिए चले जाते हैं। तब हम आगे मार्कुस 14 उसके 39 पद में पढ़ते हैं, और वह फिर चला गया और वही बात कहकर प्रार्थना की, और तब हम देखते हैं कि शिष्य भी फिर से सो गए। और आगे मार्कुस 14 उसके 40 में लिखा है, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें। मित्रों, शिष्यों की विफलता को समझाया नहीं जा सकता, परंतु हम निश्चय ही एक सबक सीखते हैं, देह पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। मार्कुस 14 उसके 41 और 42 में आगे लिखा है, फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची, देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है, उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। यहाँ यह प्रत्यक्ष है कि यहाँ समय में अंतराल है, क्योंकि यीशु के पकड़े जाने से पूर्व वे फिर सो गए थे। मार्कुस 14 उसके 43 पद में आगे हम पढ़ते हैं, वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो बारहों में से था अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए तुरंत आ पहुंची। मित्रों, उनकी योजना तो यह थी कि पर्व के समय वे यीशु को न पकड़ें, परंतु वे वही करने निकल पड़े जो उन्हें नहीं करना था। मार्कुस 14 उसके 44 में लिखा है, और उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना। यहाँ एक अत्यधिक घृणित कार्य किया गया है। यहूदा जानता था कि यीशु का विश्राम स्थल कहाँ है, इसलिए वह विरोधियों को वहाँ ले गया। चुंबन प्रेम और अनुराग का चिन्ह है, जिसे यहूदा ने यीशु को पकड़वाने का चिन्ह ठहराया था। इस कारण यहूदा का यह कार्य उसे और अधिक कायरतापूर्ण एवं असंगत बना देता है। मित्रों, यहाँ एक बात देखने को मिलती है कि शारीरिक रूप में यीशु अन्य मनुष्यों के स्वरूप था, अतः उसकी पहचान करवाना आवश्यक था। तब हम मार्कुस 14 उसके 45 पद में पढ़ते हैं, और वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। यहाँ आप देखेंगे कि यहूदा उसे रब्बी कहता है, प्रभु नहीं। पौलुस कहता है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही मनुष्य यीशु को प्रभु कहता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 3 पद में आप इसे देख सकते हैं। आगे हम मार्कुस 14 उसके 46 पद में पढ़ते हैं, तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। मित्रों, पापी मनुष्यों ने यीशु को पकड़ा और वे ले गए। यीशु अपने आप को उन्हें सौंप देता है कि क्रूस तक पहुंचे। शमौन पत्रस उसकी सहायता करने का प्रयास करता है। 14 उसके 47 पद से लेकर के 49 पद में हम आगे पढ़ते हैं, उनमें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मेरे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझ पर हाथ ना डाला, अर्थात मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। यीशु ने धर्मशास्त्र की ओर संकेत किया कि यह भविष्यवाणी है जो पूरी होनी थी। यदि उन्हें धर्मशास्त्र का ज्ञान होता तो वे यीशु को पकड़ने से पीछे हटते या उसे पकड़ते ही नहीं। मार्कुस 14 उसके 50 पद में लिखा है, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। मित्रों, हमारे अनुमान के अनुसार वह पतरस ही था जिसने उस दास का कान तलवार से काट दिया। यहोना लिखता है कि उस दास का नाम मलखुस था। पतरस एक अच्छा मछुआरा था, परंतु तलवार चलाना वह नहीं जानता था। उसने गर्दन पर वार किया था, परंतु निशाना चूक गया और उसका कान कट गया। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। अब यहाँ पर एक युवक का उल्लेख किया गया है। मार्कुस 14 उसके 51 और 52 पद में हम पढ़ते हैं, और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा, पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया। मित्रों, इस युवक के बारे में कल्पनाएं की गई हैं कि वह कौन है, अर्थात कौन था। कुछ लोगों का कहना है कि वह यूहन्ना मार्कुस था, कुछ का कहना है कि वह पौलुस था, परंतु मेरे व्यक्तिगत राय में वह यूहन्ना मार्कुस ही था। मार्कुस 14 उसके 53 पद में हम पढ़ते हैं, फिर वे यीशु को महायाजक के पास ले गए और सब महायाजक और पुरनिय और शास्त्री उसके यहाँ इकट्ठे हो गए। वे यीशु को महायाजक और कैफा के पास लाए, और तब कैफा रोमी सरकार से अधिकार प्राप्त महायाजक था, परंतु मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसका ससुर हन्ना अधिकृत महायाजक था। मरकुस लिखता है कि वे पहले हन्ना के पास यीशु को लाए। कुछ लोगों का मानना है कि यीशु की हत्या के षड्यंत्र के पीछे इसी दुष्ट का हाथ था। उस समय महासभा की बैठक बुलाई गई थी। मार्कुस 14 उसके 54 में हम पढ़ते हैं, पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के यांगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। पतरस अपने पतन की ओर अग्रसर है। पहले तो वह दूर से ही अनुसरण कर रहा था, और अब वह गलत लोगों के मध्य बैठ गया है। मार्कुस 14 के 55 में हम पढ़ते हैं, महायाजक और सारी महासभा यीशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली। यहाँ ध्यान दीजिए कि महासभा की बैठक रात के समय बुलाई गई थी, जो अवैधानिक था, और दूसरा, वे केवल यीशु के विपक्ष का ही बयान सुन रहे थे, यीशु का नहीं। तब हम आगे पढ़ते हैं मार्कुस 14 उसके 56 से 59 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि बहुतेरे उसके विरोध में झूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी न थी, तब कितनों ने उठकर उस पर यह झूठी गवाही दी कि हमने इसे यह कहते सुना है कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से बना न हो। इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली। मित्रों, वहां अनेक झूठे गवाह उपस्थित किए गए थे, परंतु उनकी गवाहियां आपस में मेल नहीं खाती थी। व्यवस्था के अनुसार दोष सिद्ध करने के लिए 2 गवाह आवश्यक थे। यीशु ने यह नहीं कहा था कि वह मंदिर को गिरा देगा और वह 3 दिन में पुनः बना देगा। उसने जो कहा वह वास्तव में यह था, इस मंदिर को ढा दो, अर्थात तुम इस मंदिर का नाश कर दो। और यूहन्ना के वृतांत में यह बात स्पष्ट है। यूहन्ना 2:21 में हम पढ़ते हैं, उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। तब हम फिर आगे मार्कुस 14:60-62 में आगे पढ़ते हैं, तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। मित्रों, यीशु ने झूठे गवाहों का विरोध नहीं किया क्योंकि भविष्यवाणी को पूरा होना था। यशायाह नबी की पुस्तक 53:7 में लिखा है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप अर्थात शांत रहती है। मित्रों, यीशु की मौन स्थिति के कारण महायाजक विस्मित हुआ और उसे क्रोध आ गया। वह चाहता था कि यीशु कुछ कहकर अपने आप को निर्दोष सिद्ध करे, अतः उसने यीशु को शपथ दी। शपथ में बंध जाने के कारण यीशु को अपनी सच्चाई कहनी पड़ी कि वह परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इससे बढ़कर कोई दावा नहीं है। हम सुसमाचार में पढ़ते हैं जहां पर लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। मित्रों, महायाजक स्पष्ट समझ गया कि उसके कहने का अर्थ और अभिप्राय क्या था। उसने अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कपड़े फाड़े जो मूसा के व्यवस्था के विरुद्ध था। महायाजक के कपड़े फाड़ना वर्जित था, उसको मना था। मार्कुस 14:63-65 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? तुमने यह निंदा सुनी, तुम्हारा क्या राय है? उन सब ने कहा, वह वध के योग्य है। तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगा कि भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे। उन्होंने उसे मृत्यु दंड का दोषी ठहराया क्योंकि उसने अपने आप को मसीहा कहा था, परंतु पिलातुस की उपस्थिति में उन्होंने उसका दोष बदल दिया था। मार्कुस 15:3 में हम इसे पाते हैं। उसके साथ घोर अपमान का व्यवहार किया गया। जरा कल्पना कीजिए कि वे परमेश्वर के पुत्र के मुंह पर थूक रहे थे। जब यीशु पर यह झूठा मुकदमा चलाया जा रहा था, तब पतरस बड़ी परीक्षा के स्थान में था। हम आगे पढ़ते हैं मार्कुस 14:66-70 में, जब पतरस नीचे आंगन में था तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहां आई और पतरस को आग तापते देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। वह मुकर गया और कहा, मैं तो नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है। फिर वह बाहर डेवड़ी में गया और मुर्गे ने बांग दी। वह लौंडी उसे देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी कि यह उनमें से एक है, परंतु वह फिर मुकर गया। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा, निश्चय तू उनमें से एक है क्योंकि तू गलीली भी है। मित्रों, दासी की छोटी सी बात पर पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया। पतरस यीशु का अनुयायी कहलाने से लजा रहा था। क्या आप कभी ऐसी स्थिति में आए हैं जहां पर आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए लज्जा महसूस हुई हो? मित्रों, प्रभु हमारी कायरता और निर्बलता को क्षमा करे जैसे उसने पतरस को क्षमा किया था। तीसरे साक्षात्कार में पत्रस का व्यर्थ बोलने का स्वभाव उसे संकट में डालता है। मार्कुस 14 उसके 71 और 72 पद में पढ़ते हैं, तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। तब तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी। पत्रस को वह बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण आई कि मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इनकार करेगा। वह इस बात को सोचकर रोने लगा। मित्रों, वह अपनी निर्बलता को नहीं जानता था। वह यीशु से प्रेम करता था और शपथ खाते समय उसके मन में सच्चाई थी, परंतु वह अपने आप को नहीं पहचानता था। वह उस ख्याल पर नहीं था जहां वह समझ पाता कि देह में अच्छाई नाम मात्र की नहीं होती है। मित्रों, तथापि पत्रस ने पश्चाताप किया, जो एक विश्वासी की सच्ची परख है। उसके आंखों से आंसू बह निकले, उसके हृदय टूट गए, और ये सब पश्चाताप के थे। उसने वर्षों बाद लिखा, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। पहला पत्रस 1:5 में हम इसे पाते हैं। मित्रों, पत्रस जान चुका था कि प्रभु यीशु मसीह ने ही उसे क्षमा किया है, अर्थात उसे थामे रखा है। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और इस अध्याय का भी समापन होता है, लेकिन हम देखते हैं कि यीशु बैरियों के हाथ में है और उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया है। एक ने उसके साथ विश्वासघात किया है और एक ने उसका इनकार किया है। यह रात पाप की रात थी, जो बहुत सारे लोगों के जीवन के लिए पाप की रात कष्टमय रात होती है। मेरे मित्रों, आज मुझे और आपको निर्णय लेना है कि आप कौन से व्यक्ति हैं। आप विश्वास घात करने वाले व्यक्ति हैं, या आप उसका इनकार करने वाले व्यक्ति हैं, या आप उनमें से हैं जो छोड़ करके भाग गए हैं। आज मुझे और आपको भी अपने जीवन में झांक कर देखने की आवश्यकता है, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में देखने पाएं कि वह हमारे जीवन में है और हम उसके सच्चे विश्वासी हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
पा